ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से नकदी बरामदगी के बारे में पूरी आंतरिक जांच रिपोर्ट जारी की है। 25 पृष्ठों की जांच रिपोर्ट में होली की रात न्यायाधीश वर्मा के घर पर की गई अग्निशमन कार्यवाही के वीडियो और फोटोग्राफ्स शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने न्यायाधीश वर्मा का जवाब भी जारी किया है। अपने जवाब में न्यायाधीश वर्मा ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि जिस कमरे में आग लगी थी और जहां कथित तौर पर नकद राशि पाई गई थी वो मुख्य भवन नहीं बल्कि एक बाहरी कमरा था जहां न्यायाधीश और उनका परिवार नहीं रहता था। रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश वर्मा ने कहा कि उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी भी स्टोर रूम में नकद राशि नहीं रखी। उन्होंने जोर देकर कहा कि कथित नकद राशि उनकी नहीं थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने ये जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें आधिकारिक संवाद भी शामिल हैं। इनमें कहा गया है कि भारतीय मुद्रा के 4 से 5 अधजिले ढेर मिले थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पहले ही न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति का गठन किया है। सीजेआई खन्ना ने न्यायाधीश वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने का भी निर्देश दिया। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 10 वर्षों में 105% की वृद्धि के साथ दोगुना हो गया है। वर्ष 2015 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2,10,000 करोड़ डॉलर था जो वर्ष 2025 में बढ़कर 4,30,000 करोड़ डॉलर का हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस मामले में भारत अब अमरीका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज के निर्यात पर 20% शुल्क वापस लेने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इससे किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता भी बनी रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि रबी फसलों की अच्छी मात्रा में पैदावार की उम्मीद के बाद मंडी और खुदरा दोनों की कीमतों में नरमी आई है। एक अनुमान के अनुसार रबी सीजन के दौरान प्याज सहित फसलों के अधिक उत्पादन से आने वाले महीनों में बाजार में इनकी कीमतों में और कमी आने की उम्मीद है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि और लेखक छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल को सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। श्री शुक्ल पिछले 50 सालों से साहित्य लेखन में लगे हुए हैं। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद वर्ष 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनके उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की हिंदी के सबसे बेहतरीन उपन्यासों में से एक माने जाते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि उनकी हाल में हुई भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच साझेदारी और मजबूत हुई है। लक्सन 16 से 20 मार्च तक भारत दौरे पर थे। प्रधानमंत्री के रूप में ये उनकी भारत की पहली यात्रा थी। अपनी यात्रा के अनुभवों को एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने रक्षा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में हासिल की गई सफलता सहित द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। भारत को अहम साझेदार मानते हुए प्रधानमंत्री लक्सन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। लेबनान के इसराइल पर रॉकेट दागने के बाद इसराइल ने भी जवाब में कई हवाई हमले किए हैं। इसराइली सेना ने बताया कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के रॉकेट लॉन्चरों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। नवंबर में हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार ये हमले हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हवाई हमलों में एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हुई है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में 60वां भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग आईटीईसी दिवस मनाया। इसमें भारत के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम के 6 दशकों के बारे में बताया गया। इंडियन प्रीमियर लीग के उद्घाटन मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए लेकिन आरसीबी ने 174 रन के लक्ष्य को 17वें ओवर में प्राप्त कर लिया। आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स की टीम से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।